ओम शांति।
आज का प्रश्न है, सदा अचल अडोल रहने के लिए विशेष किस गुण को धारण करना है? सदा अचल अडोल रहने के लिए विशेष किस गुण को धारण करना है? बेफिक्र। कौन कौन से गुण है जिनको हम धारण करेंगे तो सदा अचल अडोल रह सकते हैं? साक्षी, आप तो भट्टी में क्लासेस भी सुनी होंगी ना, नहीं? साक्षी दृष्टा, हाँ जी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, अंग्रेजी में डिटर्मिनेशन, हिंदी में दृढ़ता, हाँ जी, सहनशीलता, नष्ट मोह, निश्चय बुद्धि। आई की मुरली में निश्चय बुद्धि के बारे में क्या था? अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय विजय का आधार है। तो यहां बाबा कह रहे हैं, सदा अचल अडोल रहने के लिए सदा गुण ग्राहक बनो। अब हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याणकारी भावना। अब गुण देखने से अकल्याण की भावना और हलचल में रहेंगे। अवगुण में गुण देखना इसको कहते हैं गुणग्राही। अवगुण भी हैं, किसी में तो दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। और इसका बाबा मुरलियों में किसका एग्जाम्पल देते हैं? हंस दत्तात्रे भी होगा, हंस भी, इसको कहते हैं गुणग्राही। किसको कहते हैं? अवगुण में भी जो गुण देखता है। अवगुण देखते भी अपने को गुण उठाना चाहिए। अवगुण वाले से गुण उठाओ कि क्या गुण उठाएंगे उसमें, कितना अच्छा है। हाँ, कि जैसे वह अवगुण में दृढ़ है वैसे हम गुण में दृढ़ रहें। गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। तो ये प्रश्न है, सदा अचल अडोल रहने के लिए किस गुण को धारण करना है? तो बाबा कह रहे हैं गुण ग्राहक बनो। तो गुण ग्राहक जीवन में कैसे बनेंगे? स्वयं के ऊपर ही बहुत सारा काम करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, उनमें भी गुण देखो कैसे। तो जीवन में हमारे देखो, बाबा ने हम सब के अंदर अनेक गुण भरे हुए हैं। हम आत्माओं के अनादि आदि संस्कार जो हैं वो गुण संपन्न हैं। अनादि संस्कारों से आत्मा सुसज्जित है अंदर में। सारा जो है आधार हमारा स्मृति और विस्मृति के ऊपर है। अनादि स्वरूप में हम आत्माएं सर्वगुण संपन्न हैं, 16 कला संपूर्ण हैं। तो सब गुणों से आत्मा सुशोभित है, वो ऑलरेडी अंदर में है ही है और हर एक के अंदर है। क्योंकि आत्मा अनादि में तो सभी एक स्थान पर हैं, सभी हम अपने घर से आए हैं, तो सब गुणों से संपन्न हैं। लेकिन यहाँ समय और परिस्थितियों के अनुसार विस्मृति के कारण जब आत्मा वशीभूत रहती है, अपनी जो उसके अंदर मूल्य है, वैल्यू है, उनको हम जब भूल जाते हैं तो फिर अवगुण देखते हैं। तो गुणवान बनने के लिए हर आत्मा की विशेषता को देखने की हमारी आदत पड़ जाए, हमारे संस्कार बन जाएं, उसके लिए कुछ एक बातों का हमें स्वयं पर ही अटेंशन रखना है, स्वयं पर चिंतन करने की जरूरत है। दूसरों में गुण तब दिखाई देंगे जब हम पहले सबको अपना समझेंगे, तो है ना, अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे। गुण, अवगुण हम उनमें देखते हैं जिनसे हमको नफरत होती है, लेकिन जो अपना परिवार होता है उससे नफरत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच में अभी उतना बदलाव नहीं होगा जिसके कारण अवगुण दिखाई देते हैं। तो जीवन में गुणग्राह की दृष्टि, जैसे बाबा हंस का मिसाल देते हैं कि वो कंकड़ नहीं चुगता है, मोती चुगता है। उसी तरह जीवन में अनेक प्रकार के जो परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनमें भी अगर हमारी गुणग्राह की दृष्टि है तो हम हलचल नहीं होंगे। तो गुण जैसे देखते हैं, जैसे बाबा बंदर की मिसाल देते हैं, बंदर में बहुत चंचलता होती है, विकार होते हैं, उसमें कैसे गुण देखेंगे हैं? और अथक है, हमेशा उड़ता रहता है, जैसे बंदर इधर से छलांग मारता है उधर छलांग मारता है, तो हम भी कैसे छलांग मारे? अभी अभी यहाँ, अभी अभी परमधाम, अभी अभी सतयुग में, अभी अभी संगम पर, ऐसे हम भी अपनी ड्रिल कर सकते हैं। और बंदर को मोह बहुत होता है, वो अपने बच्चे को हमेशा छाती से लगा के रखता है, चिपका के रखता है, अगर वो मर जाए तो भी लगा के रखता है हमेशा। माना छोटा होता है, जब बाकी बड़ा होता है तो वो बच्चा नहीं रहता है। हमने इसलिए बोला कि कितना एकाग्रता से सुन रहे हैं, तो सही बोला, बंदर का नहीं होता है, बंदरी का होता है मोह बच्चे। तो ऐसे अब उस मोह से हमको क्या गुण उठाना है? बाबा से मोह, क्योंकि बाबा को देखेंगे वो तो गुण ही दिखाई देते बाबा में, अब गुण तो हमको परिवार में दिखाई दे रहे हैं। किला मजबूत रहेगा। और नहीं, प्रश्न ये है कि सदा अचल अडोल रहने के लिए गुण ग्राहक बनना है, कैसे रहूं? उसके बाबा ने कहा उसके बारे में कि गुण ग्राही बनो। हाँ जी, हाँ, लेकिन हमको रहना तो परिवार में है, बाबा में अब गुण थोड़ा दिखाई देंगे। जो हम सुमन संपर्क में आ रहे हैं, साथियों से जहां रहते हैं, कर्म क्षेत्र पर आते हैं, व्यवहारिकता में आते हैं, तो गुण और अवगुण थी वहां दिखाई देते हैं। तो जैसे बंदर ये बताया कि बच्चे को छाती से लगा रखे रखते, ऐसे बाबा ने मुरली में कहा कई बार कि आप इस सब विश्व की आत्माओं को अपने आंखों के सामने, मस्तक के सामने सदा इमर्ज करके रखो। जैसे वो बंदरी अपने मरे हुए बच्चे को प्यार करती है, ऐसे आत्माएं भी संसार के क्या हैं? एक हिसाब से मरी हुई हैं, है ना? उनमें प्राण फूंकने के लिए उनको अपनी आंखों के सामने बाबा कहते इमर्ज करके रखो, उनको सकाश दो, उनमें शक्ति भरो, उनसे रूहान करो, उनको राहत दो, उनको शांति का दान दो। तो उस तरीके से हम ऐसे हर व्यक्ति में, हर बाबा के बच्चे में गुणों का तो विशेष भंडार है ही है, तभी तो उसने चुना है इस विश्व परिवर्तन के कर्तव्य के लिए निमित्त बनाया है। तो हम सब आत्माओं के अंदर गुणों से हम सभी सुसज्जित हैं, लेकिन देखने का जो चश्मा है हमारा हमेशा पड़ा रहना चाहिए। तो एक तो है अपनेपन की भावना कि सब हम परिवार का एक हिस्सा हैं। परिवार में किसी की अगर कभी कमजोरी दिखाई भी देती है तो उसको फैलाया नहीं जाता है। इसके बारे में यहां बाबा ने कहा, अगर कोई बहुत अवगुण वाला भी है तो जैसे वो अवगुण में दृढ़ है, वो हमको दिखाई देता है, अगर किसी की कमी कमजोरियों का कोई वर्णन करता ही रहता है, तो बताया ना तीन चार दिन पहले चर्चा हुई, तो वो अपना समय छोड़कर हमको पावर, आपको संपूर्ण बनाने में लगा हुआ है। उसने बेचारे अपना पुरुषार्थ का टाइम भी एकदम ताक पर रख दिया, लेकिन हमको संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए हमको वो प्रेरित करता है, समय समय पर हमको कटाक्ष करेगा, समय समय पर हमको टोंट मारेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, सावधान करता रहेगा, करेक्ट करेगा, करेक्शन करेगा। तो हमारे प्रति कितने शुभ चिंतक है, वो शुभ चिंतक मणि है जो रोशन कर रहे हैं, हमारी रोशनी को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से अवगुणी दृष्टि जिनकी है उनको भी हम गुणवान बनाने के लिए उनकी जो बोल है, उनके जो व्यवहारिकता है, कर्म है, उनसे भी हम सीख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई तरह के भाई बहन तो आते हैं समान संपर्क में, लेकिन अगर हमारी आदत पड़ जाती है तो उनका, हम उनके अवगुण का चिंतन करने के बजाय उनमें भी गुण दिखाई देने लगेंगे अगर हमारी ये प्रैक्टिस होगी तो। और इसमें और भी कुछ बातों की जरूरत है, जैसे अगर अवगुण हमको दिखाई दे रहे हैं और हमारे में सामर्थ्य नहीं है अभी अवगुण को गुणों में परिवर्तन करने का, तो उसमें हमको अवगुणों का वर्णन नहीं करना है, उनका चाहे अपने भी अवगुण है उनका भी वर्णन कर, अभी हमको अपने अवगुणों का मालूम है क्या क्या है, लेकिन उनका हमको अपने स्वयं से वर्णन करना है, दूसरों से वर्णन नहीं करना है। जैसे कई बार क्लास भी कराते हैं तो अभी हमको मालूम है जो हम बोल रहे हैं वो हमारे में क्या क्या नहीं है, लेकिन ये हम अपने लिए सबसे पहले क्लास कर रहे हैं, अपने आप को हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कुछ अवगुणों को या किसी की बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, कमियां हैं, उनको अगर हम समा के रखते हैं, फैलाते नहीं हैं, तो भी हमारे गुण ग्राह की दृष्टि बढ़ती जाएगी। अगर हम उन कमी कमजोरियों को फैलाने का काम करते हैं, वायुमंडल में फैलाते हैं, तो अवगुणी दृष्टि हमारी हमेशा बनी रहेगी, जाएगी नहीं, उससे छुटकारा कैसे पाएंगे? तो मन में हमने कई ऐसे संकल्प, ऐसे व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, दूसरे के प्रति अगर हमने मन में भरे हुए हैं तो भी हमारी गुणग्रह की दृष्टि नहीं होगी, है ना। तो शक्तिशाली संकल्प, शुद्ध संकल्प अगर हमारे मन में है और दूसरों को परिवर्तन करने की या अपनेपन की भावना अगर हमारे अंदर है तो फिर गुणग्रह की दृष्टि बनी रहेगी। फिर दूसरों के गुणों का चिंतन करते हुए, उनकी विशेषताओं को सामने रखते हुए, उनको भी हम आगे बढ़ाने में उमंग उत्साह से प्रेरित करते रहेंगे। तो एक तो अपनेपन की भावना, दूसरा क्या बताया, दूसरी बात समाने की शक्ति, माना किसी के अवगुणों को चित्त पर नहीं रखना है। अगर उनके अवगुण दिखाई भी देते हैं तो हम उनको विशेष सहयोग दें, मनसा सेवा करें उनके प्रति, और उनसे हम दूरी नहीं बनाएं। कई बार हम दूरी बनाते बनाते बहुत दूर हो जाते हैं और उनके जो अवगुण है हमारे चित्त पर रहते हैं, तो दूरी बनाने की बजाय उनसे भी हमको स्नेह से, प्यार से, संबंध संपर्क उनके साथ तरीके से रखते हुए उनके साथ भी हम ज्ञान की चर्चा करने का तरीका सीखना हमको भी उनके साथ, भले कितना भी कोई विरोधी है लेकिन उनकी बातों को उनके अनुसार ही सुनाने की अगर हमको कला है तो विरोधी भी हमारे मित्र बन जाते हैं। और तीसरा एक बताया था साक्षी दृष्टा अवस्था। तो कहीं ना कहीं लंबे समय तक पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता है या हमारे साथी संबंधी में बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा है तो साक्षी दृष्टा अवस्था भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर साक्षी नहीं होंगे तो हम हलचल में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं साक्षी होते हुए उनको सामने रखते हुए उनसे किनारा भी करना सीखना है, नहीं तो ऐसा नहीं, अगर हमारे में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं और उनके संग में आके हम भी बह गए जैसे, तो थोड़ा साक्षी दृष्टा की स्थिति भी होना जरूरी है। और तीसरी बात जो बताया निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा ने इतने बड़े परिवार को चुना हुआ है तो भगवान को भी फेथ है ना, ये कौन सी आत्माएं हैं, विश्व को परिवर्तन करने की आधार मूर्त, विश्व का उद्धार करने वाली आत्मा है। तो जब भगवान को सबके ऊपर निश्चय है कि ये आत्माएं विशेष हैं, ये आत्माएं गुणवान हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, ये आत्माएं विश्व को नई रोशनी देने वाली हैं, विश्व का बेड़ा पार करने वाली हैं, तो उसको अगर निश्चय है तो हमको भी सबके ऊपर निश्चय होना चाहिए। भोग हाँ, और बाबा घाट अर्थात किसी में भी कमजोरियां नहीं देखते हैं। भगवान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जानते हैं, लेकिन वर्णन किसका करते हैं, विशेषताओं का वर्णन करते हैं। अगर कमजोरियां हमारे में हैं भी तो पहले विशेषताओं का वर्णन करते 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 धीरे धीरे थोड़ा फूक मारेंगे, फिर इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे एक बच्चे का वीडियो भेजा था ना इंजेक्शन लगाने के लिए, कैसे वो इंजेक्शन नहीं लगाने दे रहा था, उसको प्यार से खिलौना दिखाया, ऐसे ऐसे किया और उसको इंजेक्शन लगा दिया, पता भी नहीं चला। तो बाबा भी हम सबको इस तरह से हमारी विशेषताओं का वर्णन करते 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 धीरे से कहते, तुम भी बंदर बुद्धि थे पहले, पहले नहीं बोलेंगे सीधे तुम तो फिर एहसास होता है और पहले डायरेक्ट बोल दिया, आज बाप दादा बंदर बुद्धि बच्चों को देखने आए तो कैसे लगेगा तो पत्थर बुद्धि बच्चों को देखने आए, कितने एक कैसे कलंकित बन गए हुए हैं। तो बाबा ये सब कहने पहले हमको प्रोत्साहित करते हैं, हमारी विशेषताओं का बखान करते हैं, वर्णन करते हैं, धरनी तैयार करते हैं, फिर धीरे से कहते हैं। और फिर वो जो होती है तो वो हमको जो नेगेटिविटी हमारे अंदर, हमको भी कितना प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ वास्तव में सच में थे, अगर सीधा पहले आए तो कोई टिके गया नहीं इधर। तो पहले बाबा विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो ये थी बात कि निश्चय बुद्धि, किस किस पर निश्चय, एक तो परिवार में निश्चय, बाबा पर निश्चय, और तीसरा स्वयं के ऊपर निश्चय कि हम भी बाबा कहते कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं, हमारी जीत नहीं होगी तो किसकी होगी। तो स्वयं के ऊपर निश्चय, ज्ञान के ऊपर निश्चय और ड्रामा के ऊपर निश्चय। तो सब प्रकार के निश्चय अगर हैं तो हम भी आगे बढ़ते जाएंगे, और सबके परिवार के प्रति भी विशेष रूप से निश्चय है ना, तो भी हम सब में गुण देखने की दृष्टि हमारी बने रहेगी। तो एक ये था। और दूसरा एक, जैसे मधुमक्खी होती है तो मधुमक्खी भी क्या करती है, फूलों से रस चूस चूस के लाती है, कितना प्रयास करती है वो, और उसके रस को कोई सारा ले भी जाता है बाद में। उसी तरह हम भी, हम आत्मा भी अनेक आत्माओं में कौन सा रस देखें, गुणों का रस देखें, विशेषताओं का रस देखें, तो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो हमारे में भी गुणों की विशेषताओं की जो हमारी सोच है वो बढ़ती जाएगी, विकसित हो जाएगी, दिन प्रतिदिन हमारा दृष्टिकोण ब्रॉड होता जाएगा, विशाल होता जाएगा, तो गुणग्राह की दृष्टि बनने से इस तरह से हम अचल अडोल स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ब्रह्मरी का मिसाल देते हैं, ब्रह्मरी क्या करती है, अब कीड़े को है भूमू करते 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 उसको भी पंख लगा देती है। इसी तरह से ब्राह्मण परिवार में या कोई भी हमारे सामने आता है तो हमको भूमू करना छोड़ना नहीं है। अगर कोई दूर चला जाता है तो उसको स्मृति दिलाने की, आए तुमने 3% हुई दे रही, आज 2% हो गई, 3% हो गई, हाँ भूमू करना है, भूमो नहीं भूमू करना है। तो हम ज्ञान की कैसे टिकलू टिकली, या क्या ज्ञान किसको कैसे देना है सामने, वो भी हमको थोड़ी कला होगी तो हम दूसरे के जो अंदर गुण छिपे हुए हैं उनको भी हम याद करा के स्मृति दिला के उनको हमको कार्य में लगाना है ना। कई बार क्या हमको अपने गुणों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन सामने वाली आत्माएं कोई ऐसी होती है वो परख लेती हमको। बाबा ने अगर हमको यहां रखा है, अगर हम देखें तो जो भी हम आत्माओं के अंदर हुनर भरा हुआ, विशेषताएं भरी हुई हैं, हम इस यज्ञ में सेवा कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में भी, कोई तो भले उसी व्यवसाय से संबंधित रहे हैं पीछे, लेकिन यहां आकर तो जिस सेवा में हम उपस्थित हुए हैं वो सेवा तो हम जानते नहीं थे। कभी हमने टाइप वाइप कभी सीखा ही नहीं, कभी वो खबरें बनाने सीखी नहीं है, कभी लाइब्रेरी का कोई तजर्बा नहीं है, कभी आईटी डिपार्टमेंट का तजर्बा नहीं है। तो बाबा ने यहां आके हम सबके अंदर कितनी सारी विशेषताएं भरी, अगर कोई तजर्बा था भी पहले तो 2%, और बाबा ने आकर हम सबको कितना तजर्बेदार बना दिया, कितना हम सबको आगे बढ़ा दिया। तो हमारे में उसने कमी कमजोरियां नहीं देखी, हमारी विशेषताओं को देखा। तो हमारे अंदर भी उस तरह का दृष्टिकोण तैयार करने के लिए, निर्मित करने के लिए, लंबे समय तक दूसरे की कमी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हुए या जानते हुए भी उनकी विशेषताओं के ऊपर विशेष फोकस करना है, और उनको हम आगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारी गुणग्रह की दृष्टि नेचुरल बन जाएगी, तब कहेंगे हम होली अंश है। तो फिर जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आती हैं उनमें हम अचल अडोल रह सकते हैं। हमारा हलचल का जो समय कब होता है, परिस्थिति आती है और उसमें हम विस्मृत हो जाते हैं, अपने ज्ञान से विस्मृत हो जाते हैं, अपनी शक्तियों से विस्मृत होते हैं, विशेषताओं से विस्मृत हो जाते हैं, हमारा साथी कौन है उससे विस्मृत हो जाते हैं। तो जीवन में फिर हलचल आती है, फिर हलचल आती है तो फिर अचलगढ़ का यादगार हमारा कैसे कायम रहेगा। इसलिए अचलगढ़ में अचलेश्वर महादेव, वहां किसकी पूजा होती है, शिव के अंगूठे की पूजा होती है, वहां अचलेश्वर महादेव में शिव के अंगूठे की पूजा है। शिव ने शंकर के अंगूठे कहते हैं, वैसे शिव शंकर वो तो एक ही मानते हैं, पांव का अंगूठा, पैर का अंगूठा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी यादगार है अचलगढ़। तो यहां बाबा फिर से हम नजर दौड़ाते हैं और फिर से देखते हैं क्या मिलता है यहां पर। और तो प्रश्न है, सदा अचल अडोल रहने के लिए विशेष किस गुण को धारण करना है, तो उत्तर है सदा गुण ग्राहक बनो। अब हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे, हर बात में अकल्याण के पर्दे के पीछे भी कल्याण दिखाई दे ना? जैसे दिखाया ना अकबर और बीरबल की कहानी, कि जो जंगल में जा रहे थे शिकार करने के लिए तो अकबर का अंगूठा कट गया और बीरबल ने बोला बहुत अच्छा हुआ, तो बीरबल को डाल दिया सीधा जेल में, और फिर अकबर गया अगली बार शिकार करने अकेले, तो फिर जंगल में उनको मिले अघोरी साधु, उन्होंने पकड़ लिया तो लेकर गए अपने महाराजा के पास, बोला आज इसकी बलि चढ़ाएंगे। तो उसने सारा परीक्षण किया, उसका सारा निरीक्षण जांच वगैरह किया, तो उसका अंगूठा कटा हुआ था, तो बोला इसकी बलि तो हो नहीं सकती। तो फिर वहां उसको बीरबल की बात याद आई कि इस बात में भी कल्याण था, अंगूठा कटा हुआ है, लेकिन हमको नहीं कहना अगर किसी का अंगूठा कट जाए तो अच्छा हुआ, ये उसने कहा था। तो फिर ऐसे वापस आया तो बोला बीरबल ने कि वास्तव में बात तो आपने ठीक कही थी, लेकिन ये तो आपने ठीक कहा कि अंगूठा कटा तो कल्याण हो गया, लेकिन आपको हमने अंदर डाला तो कैसे कल्याण हुआ। तो बोला अगर मैं साथ में होता तो मेरा भी कल्याण कर देते वो। तो इस तरीके से हर बात में कल्याण छिपा हुआ है, अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं अब हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याणकारी भावना, सबके प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, कल्याणकारी भावना। अवगुण देखने से अकल्याण की भावना और हलचल में रहेंगे। अगर हमारे में अकल्याण की भावना है, हलचल है, तो जरूर कहीं ना कहीं हम अवगुण को अपने चित्त पर रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं, और वो अवगुण जो है वास्तव में वो हमारे पुरुषार्थ में बाधक हैं। अगर हम दिखाई दे भी रहे हैं, एक तो हम दूसरों को परिवर्तन करने के बजाय उनके अवगुणों का बखान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वाइब्रेशन वायुमंडल में उनको फैला रहे हैं, तो वो हमारे संस्कार बन जाएंगे वो, और हमारे हमें ही धोखा दे रहे हैं, हम अपने पांव पर जैसे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो हमारे पुरुषार्थ की गति भी धीमी हो जाएगी, रुक जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं अवगुण देखने से अकल्याण की भावना और हलचल में रहेंगे। अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। अवगुण देखते भी अपने को क्या उठाना चाहिए, गुण उठाना चाहिए। अवगुण वाले से गुण उठाओ कि जैसे यह अवगुण में दृढ़ है वैसे हम गुण में दृढ़ रहेंगे। गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। तो ये थे आज के भगवान के महावाक्य। ये मुरली है 14/5/1977। तो अचल अडोल रहने के लिए गुण ग्राहक बनो। तो सबसे पहले तो जितनी भी हमने बातें चर्चा की उससे भी पहले एक है कि हमारे में कौन कौन से गुण हैं उनका भी हमको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है और हमको पता नहीं है तो हम यूज कैसे करेंगे। तो अपनी विशेषताओं का भी पता होना चाहिए और अपनी विशेषताओं का ही चिंतन करना चाहिए अंदर अंदर। बखान नहीं करने की जरूरत, लेकिन बखान की बजाय अपने अंदर उनका चिंतन करना है और उनकी लिस्ट हमारी बुद्धि में हमेशा बनी रहनी चाहिए कि कौन कौन सी विशेषताएं हमारे में। अच्छा, दूसरी बात, अब दूसरों के जो अवगुण हैं उनमें हमको गुण देखने हैं तो कौन सी विशेषताओं से हम दूसरों के अवगुण में गुण देख पाएंगे, क्या क्या गुण होने चाहिए हमारे में। सरलता होनी चाहिए, जैसे भी जिस किसी भी संस्कार वाला कोई भी कैसा कड़े संस्कार वाला भी है वह हम एडजस्ट हो जाएं, सरल नीचे से इजी तरीके से वह हम एडजस्ट हो सकें, और उस अपनेपन की भावना। फाउंडेशन तो वही था, वो बता दिए पहले। हाँ जी, एग्जाम्पल एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना है। क्या स्वीकार करना है, किसके में अवगुण है, अंदर नहीं बैठाना, स्वीकार कर लेना कि अपना है। हाँ, माना उसने भगवान ने उसको चुना हुआ है तो जरूर कोई ना कोई गुण है, और ये तो भगवान ने चुना, और जिनके अंदर संसार में जिनको भगवान ने अभी नहीं चुना तो क्या करेंगे, कहना आपको चुनने के लिए आ गया हुआ है, मुझे आपके लिए आपके पास भेजा है। लेकिन अधिकतर तो देखो परिवार में हम फिर भी एडजस्ट हो जाते हैं, हमको पता है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, रहम की भावना और समाने की शक्ति और सहन शक्ति और शुभ भावना, शुभ कामना, हाँ, और तो बाहर में जब हम जाते हैं कर्म क्षेत्र पर, जो लौकिक संसार में जो सर्विस करते हैं या घर गृहस्थ में हम रहते हैं, तो वहां भी हमको बहुत सारे गुणों की जरूरत पड़ती है। बहाने तो कई बार होते हैं, हम अपने ज्ञान को सिद्ध करने के सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं कि नहीं हम ही राइट हैं, और उनको हम इग्नोर कर देते हैं। और अगर हम बाहर वालों को ज्यादा इग्नोर करते हैं तो फिर हमको वो हमें इग्नोर करने लग पड़ेंगे, हमारे पुरुषार्थ में सहयोगी नहीं बनेंगे। तो लौकिक जिम्मेदारियों से भी हमको पीठ नहीं करनी है, उनको जहां तक है हमको सही तरीके से निभाना है। अगर उनको भी बाबा का बच्चा बनाना है या थोड़ी बहुत उनको अनुभूति करानी है, जितना वो बरसे के अधिकारी हैं उससे हम उनको वंचित ना रखें बल्कि उनको उनके मनवांछित फल प्राप्त कराएं, तो उसके लिए हमको उस माहौल में अपने आप को ढालने के लिए ज्ञान को सही तरीके से अप्लाई करना होगा। बाबा ने कहा चैरिटी बिगेन्स एट होम, लेकिन वहां बड़े निष्ठुर कठोर दिल के निर्दयी हो जाते हैं। हम अपने आप को सिद्ध करने के लिए अपने ज्ञान को पहले प्राथमिकता देते हैं, लेकिन वो भी तो बाबा के बच्चे हैं ना, पूरा संसार ही उसी का है ना। तो हर बात में हमको बाबा के ज्ञान को जोड़कर, चाहे हम इस संसार में रहें चाहे उस संसार में रह रहे हैं, तो परिवर्तन तो पूरे संसार को करना है। पावन किसको करना है, सबको करना है, प्रकृति को करना है, लौकिक अलौकिक सबको करना है। तो जहां भी हम रहते हैं तो जैसे बताया, एक सरलता गोगुण है, एडजस्टमेंट नेचर है, या स्वीकृति है कि स्वीकार कर लेना उनको कि इनमें ये हैं और उनको परिवर्तन करने की जिम्मेवारी है, हमको इस सेवा क्षेत्र में रखा गया है, हमको सेवा सौंपी गई है, ये जो छोटा सा परिवार है ये बाबा के बच्चे हैं, इनको परिवर्तन करने के लिए बाबा ने हमको जिम्मेवारी दी है, जिम्मेवारी हमारे कंधों पर रखी है, तो भी हम अचल अडोल रह सकते हैं। और तो सरलता, जिम्मेवारी, स्वीकार करना और हाँ जी शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, वही तो नहीं होती है। और तो शुभ भावना, शुभ कामना कैसे रखेंगे, सबके प्रति शुभ भावना ही शुभ कामना के संकल्प ही चले कैसे होंगे वो। हम पूर्वज हैं, आधार मूर्त हैं, हम जगत माताएं हैं, जगत पिताएं हैं, है ना। बताया ना बंदरी की कैसे रखती है अपने बच्चे को बंदरी, तो ऐसे हम संसार के पूर्वज हैं, सब आत्माएं हमारे हमेशा सामने रहनी चाहिए। तो ये बात होगी। और कौन से गुण हैं जो हमारे अंदर हैं और हमें उनको कर्म क्षेत्र अप्लाई करना है उनको। कोई बुरा है ही नहीं है ये, क्योंकि तो फिल्म चल रही है और सब अपना अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रहे हैं। अधिकतर फिल्मों में भी जो एक्टर विलियन थे, तो जो विलियन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और जो दूसरे होते हैं ना वो थोड़ा ज्यादा ही अच्छे होते हैं, याद भी विलियन ज्यादा रहते हैं। तो हर आत्मा अपना अपना इस पार्ट में, इस रंगमंच पर अपने अपने कर्मों के अनुसार पार्ट प्ले कर रही है, सब एक्यूरेट हो रहा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सब निर्दोष है, निर्दोष नहीं बल्कि संपूर्ण निर्दोष है। और कौन सा गुण होना चाहिए? तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, निर्दोष दृष्टि होनी चाहिए, और क्षमा भाव। हाँ, अगर कोई गलती करता है हम क्षमा कर दें उनको, और कर दें और क्षमा ले भी लें जितने बड़ी हो सके, अंत तक, अंतिम श्वास तक क्योंकि लाइफ एक दो दिन की नहीं है, ये तो अंत तक है। और कौन से गुण होने चाहिए जो हमारे में हैं ऑलरेडी, और हम उनको कर्म क्षेत्र पर लगाना है उन्हें? रहम, दिल, क्षमा, और संतुष्टता का भी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो जाते हैं हम उनके बर्ताव से, जब वो हमारे मार्ग में बाधक बनते हैं, तो संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है हर परिस्थिति में। संतुष्ट मणियों के बारे में बाबा ने क्या बोला था, अभी क्या सुनाया था आपने? वो कहां रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और दिल तख्त पर, वो दिल तख्त पर रहते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, अगर हम हर परिस्थिति में हर बात में संतुष्ट हैं और ज्ञान को पूरा अप्लाई कर रहे हैं, तो बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे। तो दिल तख्त के अधिकारी बनने के लिए सदा संतुष्ट रहना भी जरूरी है। और कौन से गुण चाहिए? तो सभी बताओ ना, ऐसे एक में थोड़ा नहीं होगा सभी अक्षर में सारे आ जाएंगे। हर्षित मुख, हाँ, प्रश्न तो बताओ आप। अचल अडोल रहने के लिए गुण ग्राहक की कैसे बनना है? दूरांदेशी बुद्धि, माना सभी के आदि मध्य अंत की स्त्री को सामने रखते हुए भी हम बुद्धि में स्मृति में रखेंगे तो भी दूरांदेशी बुद्धि बनकर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर भी संतुष्ट रहेंगे और उनको भी आगे बढ़ाते रहेंगे, एडजस्टमेंट हो सकेगी वहां हमारी। और कौन से गुण होने चाहिए? हाँ जी, समाने की शक्ति। पहले बाण 36 गुण कौन से गुण लिखे हो पहले तो वो बताओ आप। बाण 36 गुण लिखे हुए हैं, कौन कौन से हैं? एक्सेप्टेंस लिखा है वहां? नहीं लिखा है। अनुशासन, आत्मविश्वास, अंतर्मुखता, ऐसे पांच है। नहीं, वो तो ए में चला गया, नहीं वो इंग्लिश में। अंतर्मुखता, आत्मविश्वास, आज्ञाकारी, एक और बोला ना अभी, तीन तो पहले बोले थे, अनुशासन, एक और बोला था, अचल अड्डोल, वो तो रहना उसी के लिए तो वो चाहिए, अथक, ये पांच ऐसे सारे है। गंभीरता, गुणग्राहकता, धैर्यता, यथार्थता, रमणीकता, हर्षित मुक्ता, नियमितता, नम्रता, निश्चिंतता, पवित्रता, परोपकारिता, रहम, दिल। तो इस तरह से 36 गुण है। तो हमारे में कौन कौन से गुण हैं उनका भी हमको चिंतन करेंगे तो गुणग्राहक की दृष्टि हमारी बन जाएगी, और जैसे हम अंदर से सोचेंगे जितने हमारे में गुण बढ़ते जाएंगे तो बाहर भी वैसे सभी दिखाई देंगे। जैसा चश्मा पहनेंगे तो जो सूखी घास है वो भी हरी दिखाई देगी, हरी हरा रंग का चश्मा पहनेंगे। ठीक है, और कुछ? बस हो गया। हाँ, पहले दिखाई देगा तभी तो बनेंगे, अब रास्ता नहीं दिखाएगा तो चलेंगे कैसे? तो पहले टेस्ट बाद की, टेस्ट लेस बनना, अनासक्त वृत्ति, टेस्ट लेना ही नहीं है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और फिर पूर्ण विराम लगा देते हैं आज का। तो सदा अचल अडोल रहने के लिए विशेष किस गुण को धारण करना है? तो बाबा कह रहे हैं, सदा गुण ग्राहक बनो। अब हर बात में गुणग्राही होंगे, अब हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याणकारी भावना। अवगुण देखने से अकल्याण की भावना और हलचल में रहेंगे। अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। अवगुण देखते भी अपने को गुण उठाना चाहिए। अवगुण वाले से गुण उठाओ कि जैसे वह अवगुण में दृढ़ है वैसे हम गुण में दृढ़ रहें। गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। तो ये आज का प्रश्न था। मुरली सी डेट 14 मई 1970। ओम शांति।